بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا متروں، کارکرم کا شبھارمبھ پویتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیر کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi। दोस्तों, आज शनिवार है, आज़र माह की 26, जमादिल अव्वल की 22 और दिसंबर की 17 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम ईरान भ्रमण, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा उज्जवल भविष्य। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कहना है कि अमेरिका ईरानी राष्ट्र को बहकाने में नाकाम रहा। विदेश मंत्री ने इसराइल को पूरे इलाके के लिए गंभीर खतरा बताया है। इराकी जनता ने कार्यक्रम से अमेरिकी दूतावास की टीम को निकाल दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने दक्षिणी खुरासान प्रांत के शहर बीरजंद में आम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमरीका ने जहां भी कदम रखा वहां रक्तपात के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो हालिया दंगों में ईरानी राष्ट्र को धोखा देने में विफल रहा। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि दुश्मन ने हालिया दंगों के दौरान ईरानी राष्ट्र के बारे में गलत अनुमान लगाए थे। उनका ख्याल था कि ईरान भी दूसरे देशों की तरह है, जहां वो मन चाहे नारेबाजी करके लोगों को धोखा देने में सफल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने सोचा था कि वो आज़ादी के नाम पर ईरानी राष्ट्र का विश्वास हासिल करने में सफल हो जाएगा, लेकिन ईरानी राष्ट्र अच्छी तरह से अवगत है कि अमरीकी दुनिया में किसी का भी भला नहीं चाहते। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि अमरीका ने दुनिया के किस क्षेत्र के लोगों को जीवन प्रदान किया। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने दूसरे देशों में पश्चिमी देशों की अतिक्रमणकारी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा कि ये बताने के लिए इतिहास की किताबों का हवाला देने की भी ज़रूरत नहीं है जो पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान, अफ्रीका, सीरिया और यमन की जनता के साथ किया है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरानी राष्ट्र की समझ बूझ ने दुश्मन की योजना को विफल बना दिया है, और वो इस्लामिक क्रांति और उसकी शक्ति की रक्षा के लिए अपनी सारी शक्ति के साथ मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों के दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने देख लिया है कि दुश्मन ने किस तरह बच्चों को शाह चिराग में जिंदगी प्रदान की। राष्ट्रपति रईसी का इशारा उस आतंकी हमले की ओर था जो दाइश के आतंकियों ने 26 अक्टूबर को शिराज के शहर में स्थित हजरत अहमद बिन मूसा शाह चिराग अलैहिस्सलाम के रोजे पर हमला करके 15 तीर्थयात्रियों को शहीद और 19 अन्य को घायल कर दिया था।
ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ انیان نے زائن شاسن کو پورے علاقے کے لیے گمبھیر خطرہ بتایا ہے۔ ودیش منتری نے کہا کہ فلسطین کی دھرتی پر غیر قانونی قبضہ کرنے اور پرمانو ہتھیار بنا لینے کے بعد زائن شاسن پورے علاقے کے لیے گمبھیر خطرہ بن گیا ہے۔ حسین امیر عبداللہ انیان نے کہا کہ زائن شاسن ایک جعلی اور غیر قانونی شاسن ہے جو پورے علاقے کے لیے بہت گمبھیر خطرہ ہے۔ ودیش منتری نے ٹویٹ کیا کہ قابض زائنی شاسن کے پاس سینکڑوں پرمانو وار ہیڈ ہیں اور تیل ابیب ہمارے پورے علاقے کے لیے سنیکت خطرہ ہے۔ انہوں نے آگے لکھا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بھوشیہ فلسطین کے اصلی نواسیوں کا ہے۔ حسین امیر عبداللہ انیان کا صاف سنکیت تھا کہ بھوشیہ میں اسرائیل نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔
عراق میں مہان کمانڈروں شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی یاد میں آیوجت کارکرم میں امریکی دوتاواس کی ٹیم کو باہر نکال دیا گیا۔ ایران کے قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی پاپولر فورس حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو ان کے 8 گارڈوں کے ساتھ امریکہ نے ڈرون ویمان سے آتنکی حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ بغداد میں ان شہیدوں کی یاد میں آیوجت کارکرم ہوا جس میں شرکت کے لیے امریکی دوتاواس کی ایک ٹیم بھی پہنچ گئی، تو وہاں موجود لوگوں نے امریکہ مرد آباد اور امریکہ مہا شیطان کے نعرے لگانا شروع کر دیے، جس کے بعد کارکرم سے امریکی دوتاواس کی ٹیم کو باہر جانا پڑا۔ اس سمے ایران اور عراق سہیت کئی دیشوں میں آتنکواد کے خلاف ایتیہاسک اور یادگار جنگ کرنے والے ان مہان کمانڈروں کو شردھا پیش کرنے کے لیے کارکرموں کا آیوجن ہو رہا ہے۔ ان دنوں شہیدوں کی تیسری برسی منائی جا رہی ہے۔ عراق میں ستھانیہ لوگ ان کارکرموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔
حملہور سعودی گٹھ بندھن نے یمن کے الحدیدہ پرانت کو بھیشن حملوں کا نشانہ بناتے ہوئے بھیشن بمباری اور گولہ باری کی۔ المسیرہ چینل کی رپورٹ کے انوسار یمن کے الحدیدہ پرانت میں یمن کی سشستر سینا کے آپریشنل ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ سعودی گٹھن کے ڈرون ویمانوں نے الحدیدہ میں ہیس اور الجبلیہ پر کئی بار حملے کیے۔ حملہور سعودی گٹھ بندھن نے یدھ ورام کا کئی بار الگھن کرتے ہوئے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران یمن کے الحدیدہ پرانت کے وبھن کھیتروں میں دسیوں بار ہوائی اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، جبکہ بھیشن گولہ باری بھی کی۔ دوسری اور میڈیا ستروں نے بتایا کہ ہی شہر میں حملہ ور سعودی عرب گٹھ بندھن کے کال کی بچی ہوئی بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں 3 لوگ ہتاک ہو گئے۔ ادھر ابیان پرانت میں سنیکت عرب امارات سے جڑے لڑاکوں کے راستے میں ہونے والے دھماکے میں 6 لوگ ہتاک و گھائل ہوئے ہیں۔
یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ دکشن پوروی ترکیہ میں پولیس کی بختر بند گاڑی پر بم حملے میں 8 پولیس کرمیوں سہت 9 لوگ گھائل ہو گئے۔ میڈیا کے انوسار اس حملے کے بعد کرد باہول علاقے میں ہنسا اور اشانتی کی نئی لہر اٹھنے کی آشنکا بڑھ گئی ہے۔ استھانیہ گورنر کے کاریالے کی اور سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دیار بکر شہر کے قریب ہونے والے حملے میں 8 پولیس کرمی اور ایک عام ناگرک گھائل ہو گئے، جبکہ علاقے میں خوف کا ماحول ہے۔ ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ گھائلوں کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر احتیاط کے طور پر انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کرا دیا گیا ہے۔ ٹیلی ویژن فوٹیج میں دھماکے کی زد میں آنے والے سفید بس کے ملبے سے بھرے روڈ پر کھڑا دکھایا گیا ہے۔ فوٹیج میں بم کی چپیٹ میں آنے والی ایک چھوٹی گاڑی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ کسی سنگٹھن نے ابھی تک حملے کی ذمہ داری سویکار نہیں کی ہے۔ دھماکہ تب ہوا جب ترکیہ کی اور سے اتری سیریا میں کرد فورسز کے خلاف ہوائی حملے تیز کیے جا رہے ہیں۔
ترکیہ نے اپنے پہلے ہوا سے زمین پر مار کرنے والے ہائپر سونک میزائل کا سفل پریکشن کیا ہے۔ یہ میزائل حملہ ور ڈرون بیرقدار اکنزی سے فائر کیا گیا، جس نے 100 کلومیٹر دور سفلتا کے ساتھ اپنے لکش کو نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹ کے انوسار ترکیہ نے پہلے ہائپر سونک میزائل کا سفل پریکشن کیا۔ یہ پریکشن شکروار کو ترک نرمت حملہ ور ڈرون ویمان سے کیا گیا، جس نے 100 کلومیٹر دور اپنے لکش کو سفلتا سے نشانہ بنایا۔ میزائل کو 25,000 فیٹ کی اونچائی سے فائر کیا گیا تھا۔ ترکیہ کے رکشہ ادیوگ کی کمپنی روختسان نے ٹویٹر پر اس میزائل کے فائر کیے جانے کے کھن کا بیورا جاری کیا۔ رپورٹ کے انوسار یہ میزائل 20 سے 150 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور یہ ترکیہ کا ہوا سے زمین پر مار کرنے والا پہلا ہائپر سونک میزائل ہے۔
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने न्यूयॉर्क में बहुमत से एक प्रस्ताव शुक्रवार को पारित किया जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य का फैसला करने का पूरा अधिकार है। फिलिस्तीनी प्रशासन के विदेश मंत्री रियाज मालिकी ने कहा कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 168 वोट पड़े जबकि 4 इसराइल, मार्श आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नॉर्वे और अमेरिका ने इसका विरोध किया और 9 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मालिकी ने कहा कि यह प्रस्ताव और इसे मिलने वाला समर्थन फिलिस्तीनियों के अधिकारों पर डाका डालने की कोशिशों के खिलाफ विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया में है और ये इसराइल के अपराधों और उल्लंघनों का मुंह तोड़ जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने मांग की है कि फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का समर्थन किया जाए और इसराइल के गैर कानूनी कब्जे के लिए ठोस कार्रवाई की जाए।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू होने वाली जबानी जंग लगातार जारी है। सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया जो पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उठाता रहता है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान पर आतंकवाद की परवरिश का आरोप लगाते हुए ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में शरण लेने का जिक्र किया और कहा कि इसके बाद तो पाकिस्तान के पास इन मुद्दों पर ज्ञान देने का कोई आधार नहीं रह जाता। इस पर पलटवार करते हुए बिलावल ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है पर गुजरात का कसाई जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बना था तब तक उसके अमेरिका आने पर पाबंदी थी। बिलावल का कहना था कि गुजरात का कसाई अब कश्मीर का भी कसाई बन गया है। बिलावल ने कहा कि मैं पाकिस्तान का विदेश मंत्री हूं और मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा होने के नाते आतंकवाद से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ हूं। उन्होंने कहा कि राजनेता, सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान का आम नागरिक आतंकवाद से प्रभावित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि बदकिस्मती से भारत में अब ये स्थिति है कि उसके लिए आतंकी और मुसलमान साथ साथ कहना बहुत आसान है और वे दोनों के बीच की लकीर को बड़ी आसानी से धुंधला कर देते हैं जहां मेरे जैसे लोगों को आतंकियों के साथ मिला दिया जाता है। दोनों देशों के अधिकारियों की इस तल्ख बयानबाजी के बाद भारत और पाकिस्तान में बहुत व्यापक रूप से प्रतिक्रियाएं देखने में आ रही हैं। भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी शनिवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने एक बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान पूरी तरह अपमानजनक और कायरता से भरा हुआ है।
सरकार भारत सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को लिंक नहीं किया उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे। भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में 3 सदस्यों द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री से यह सवाल किया गया कि जिन लोगों के मतदाता पहचान पत्र आधार के साथ लिंक नहीं है क्या उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। इसके जवाब में मंत्री ने कहा नहीं। भारत के केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और इसे जोड़ने के लिए मतदाता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में हर दिन विनाश की नई खबरें आ रही हैं। सूचना है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों में मिसाइलों से बहुत बड़ा हमला किया जिससे दर्जनों प्रतिष्ठान ध्वस्त हो गए। कुछ लोगों के मलबे में दब जाने की भी खबरें हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को रूस ने अब तक का सबसे व्यापक हमला कर दिया जिसमें कई प्रांतों के ऊर्जा प्रतिष्ठानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के बड़े मिसाइल हमलों से जंग में शक्ति का संतुलन बदलने वाला नहीं है। हम यूरोपीय घटकों के साथ मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे।
अमरीकी राज्य शिकागो में फायरिंग की एक घटना में 2 स्कूली बच्चे हताहत और 2 अन्य घायल हो गए। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार शिकागो राज्य की पुलिस ने बताया कि स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार की शाम बेनिटो योजार्स हाई स्कूल के बाहर 2 स्कूली बच्चे गोलियों का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठे जबकि 2 अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि मरने वालों में 14 और 15 साल के 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم لے کر حاضر ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ سعودی عرب اب نتن یاہو کی پراتھمکتا میں، برٹن میں آرتھک حالات خراب، ہڑتالیں شروع اور کشمیر کے پورو مکھیہ منتری کا بیان۔ دوستو، ان وشیوں پر کارکرم میں ہم وستار سے چرچا کریں گے۔ سعودی عرب کے ودیش منتری اس بات کو سویکار کر چکے ہیں کہ ریاض اور تل اویو کے بیچ کافی نزدیکی پیدا ہو چکی ہے۔ اس سمبندھ میں ایک سمیکشا لے کر اپستھت ہیں احمد عباس۔
زائن شاسن کے نرواچت پردھان منتری بنیامین نیتن یاہو نے سعودی عرب کے سرکاری میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سے سمبندھوں کی استھاپنا ان کی ودیش نیتی کی پراتھمکتا ہے۔ ورش 2009 سے 2021 تک نیتن یاہو لگاتار اسرائیل کے پردھان منتری رہے، جس کے دوران انہوں نے عرب دیشوں سے اسرائیل کے سمبندھ استھاپت کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، مگر حال ہی میں قطر فٹ بال وشو کپ پرتیوگتا سہت الگ الگ منچوں پر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سرکاروں کے رجحان کے وپریت عرب جنتا اسرائیل کو کسی بھی طرح سویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زائن شاسن نے 2020 میں 4 عرب دیشوں امارات، بحرین، موراکو اور سوڈان سے سمبندھ بحالی کے لیے بڑی کوشش کی۔ نیتن یاہو اب ایک بار پھر اسرائیل کے پردھان منتری بنے ہیں تو عرب دیشوں کے ساتھ سمبندھ استھاپت کرنے کا اپنا ایجنڈا آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ سعودی عرب کے ادھیکاریوں کے بیانوں کو دیکھ کر بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل سے سمبندھوں کا اعلان کرنے کی چاہت رکھتے ہیں۔ ویسے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کا سمنوے لمبے سمے سے جاری ہے، مگر جنتا کے آکروش کی وجہ سے وہ اس کا اعلان کرنے سے بچ رہا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب کے ودیش راجیہ منتری عادل الجبیر نے سویکار کیا کہ ریاض اور تل ابیب کے بیچ کافی نزدیکی پیدا ہو چکی ہے اور وہ شانتی سمجھوتے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر اس کے لیے کچھ سمے کی ضرورت ہے۔ نیتن یاہو اگر پردھان منتری چنے جانے کے بعد سعودی عرب کے ٹی وی چینل العربیہ سے بات کرتے ہیں تو یہ انٹرویو بھی اپنے آپ میں اہم اشارہ ہے۔ العربیہ سعودی عرب کا سرکاری ٹی وی چینل ہے، جبکہ انٹرویو میں نیتن یاہو کی باتیں بھی یہی ظاہر کرتی ہیں۔ نیتن یاہو اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ سامان رشتوں کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد دونوں کے بیچ سامان رشتے استھاپت ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کو سنتشٹ کرنے کے لیے نیتن یاہو نے امریکی سرکار کی بھی نندا کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور انیہ عرب دیشوں کے ساتھ امریکہ کا پارمپرک گٹھ بندھن پھر سے مضبوط کیا جانا چاہیے، اس میں کسی طرح کا طوفانی بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ ابھی کوٹنیتک رشتے تو نہیں ہیں، مگر 2020 سے دونوں سرکاروں کے بیچ سہیوگ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ امارات اور بحرین کے ساتھ اسرائیل کے سمجھوتے بھی سعودی عرب کی سہمتی سے ہی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیلی ویمانوں کے لیے اپنی وایو سیما کھولی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی اسرائیلی ادھیکاریوں نے سعودی عرب کی یاترائیں بھی کی ہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے سہیوگ اور رشتوں کا اعلان کرنے سے اس لیے ہچکی جا رہا ہے کہ دیش کے بھیتر اور اسلامی جگت کے سطر پر آنے والی سمبھاوت پرتکریاؤں کی اسے چنتا ہے۔ قطر فٹ بال وشو کپ پرتیوگتا میں موراکو، ٹیونیزیا، قطر اور بہت سارے عرب دیشوں کے ناگرکوں نے کھل کر ظاہر کر دیا کہ انہیں اسرائیل سے نفرت ہے اور وہ فلسطینیوں کا سمرتھن کرتے ہیں۔ اس لیے لگتا ہے کہ سعودی عرب کی سرکار اس امید میں کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے کہ اسرائیل کے پرتی عرب جنتا کی گھرنا میں کچھ کمی آ جائے۔
بڑھتی مہنگائی نے برٹن کے سماج کے ہر ورگ کو پربھاوت کیا ہے۔ وہاں کے اتہاس میں پہلی بار ویتن میں بڑھوتری کی مانگ کو لے کر نرسیں سڑکوں پر آ گئی ہیں۔ لندن سے مشتبہ قاسم زادے کی رپورٹ کو سور دے رہے ہیں ساتھی روش زیدی۔
ब्रिटेन में पिछले 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब लगभग 1 लाख नर्सें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, वेतन में कटौती और ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन में बढ़ती समस्याओं के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं आम जनता ने भी उनकी हड़ताल का समर्थन किया है। ब्रिटिश सर्वेक्षण संस्थान इप्सोस ने एक रिपोर्ट में घोषणा की है कि इस देश के केवल 27% लोग ही नर्सों की हड़ताल के खिलाफ हैं। लंदन के सेंट मैरी अस्पताल के नर्स रिकी कहते हैं कि इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हम नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन हम यहाँ एक साथ हड़ताल पर इसलिए एकत्रित नहीं हुए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी हड़ताल से मरीजों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि अगर हम अभी हड़ताल पर नहीं गए तो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। ब्रिटेन में रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की महासचिव पैट कोलिन ने कहा कि अस्पतालों के सामने भारी संख्या में एकत्रित होकर अपना विरोध जताने वाले नर्सिंग स्टाफ जो ये दिखा रहे हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, वास्तव में वे सरकार की नाकामी को दर्शा रहे हैं क्योंकि ये सरकार मरीजों की जांच में देरी और सर्जरी को कैंसिल कर रही है। इस बीच ब्रिटिश सरकार का कहना है कि उसके पास महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। सेंट मैरी अस्पताल के नर्स रिकी कहते हैं कि सरकार के पास मानव के विनाश के लिए योजनाएं भी हैं और पैसे भी हैं, जैसे कि परमाणु पनडुब्बियों का आधुनिकीकरण और अधिक घातक परमाणु बम, लेकिन मानवता को बचाने के लिए, अपने कर्मचारियों को भूख से मरने से बचाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में ये घोषणा की है कि वर्तमान में कैंसर रोगियों और बीमार बच्चों समेत 72 लाख रोगी अपने इलाज के शुरू होने के इंतजार में सरकारी अस्पतालों की लाइनों में लगे हुए हैं। इस बीच चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई संगठनों समेत ब्रिटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा की जा रही हड़ताल का कारण ये बताया जा रहा है कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अब बीमारों के साथ साथ मेडिकल स्टाफ के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। लंदन से IRIV के लिए मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री का मानना है कि वहां के बारे में केंद्र सरकार के बयान में सच्चाई नहीं दिखाई देती। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर के हवाले से नई दिल्ली ने जो नीतियां अपनाई हैं उसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा, कभी लैंड को लीज पर दिए जाने का कानून सामने आता है तो कभी और कोई नया कानून लाया जाता है। उन्होंने कहा कि इन कानून का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य कश्मीरी कौम को गुलाम बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर वो प्रशासन में आते हैं तो वो इन सब कानून को वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि 35A और 370 की वापसी के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने लोगों पर भी बल दिया कि वो एकता के साथ आगे बढ़े। इस अवसर पर उन्होंने अपने जोशीले भाषण में लोगों पर बल दिया कि जिस तरह से तुम लोगों को जातों के नाम पर, अलग अलग समुदाय के नाम पर बांटने का प्रयास हो रहा है, इसका डटकर मुकाबला करें। उन्होंने विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य सब कुछ है, परंतु जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब हिंदू समाज के लोग भी यहां से भाग रहे हैं। उन्होंने کہا کہ کشمیری پنڈتوں کے نام پر بہت ساری راجنیتی کی گئی، پرنتو ان کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا گیا اور اب وہ بھی گاٹھی کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اس اوسر پر انہوں نے کہا،
لینے والا باہر کا پہاڑ ہمارے، پتھر پھوڑنے والے باہر کے، ارے یہاں تک کہ آپ کے گھر میں چٹھی پہنچانے والا جو ڈاکیا ہے وہ بھی باہر سے لائے جا رہے ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں جو ہیں اس قابل بھی نہیں سمجھے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے اس بات کا بھی اعتراض نہیں ہوتا، اگر میرا غریب یہاں کا لڑکا یہ بھی لگتا پھر وہاں لے جا اس کو، یہاں سے لگا ہریانہ میں، لگا پنجاب میں، لگا یو پی میں بھی مانوں، میرے ٹھیکے دار کو یہاں سے لے لو، لے جاؤ رہا پنجاب میں، وہ بھی دریا میں سے ریت نکالے گا، وہ نہیں کرو گے، وہ آپ سے ہوگا نہیں، باہر سے لوگ لا کے آپ یہاں پہ ہمارے اوپر ٹھوس دو گے۔ پھر آپ کہتے ہو ناراضگی کس بات کی؟ صرف وہ قانون یہاں رکھے گئے ہیں جن سے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، پورے ملک میں کوئی سیفٹی ایکٹ نہیں، اگر سیفٹی ایکٹ رکھا ہے تو جموں کشمیر میں، اور جیسے میں نے 3-4 سال پہلے کہا آج پھر دہراتا ہوں، انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کی حکومت آئے گی پہلے دن اس ریاست سے سیفٹی ایکٹ ہٹا دیں گے، ہم اپنی زمینیں اپنے لیے رکھیں گے، اپنے روزگار اپنے لیے رکھیں گے، اپنے ٹھیکے اپنے لیے رکھیں گے، اپنی پہچان ہم بچا کے رکھیں گے، لیکن یہ لہر جو ہے یہ یہاں سے شروع ہونی چاہیے۔
اس بیچ جموں کشمیر کے پولیس کے ادھیکش دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ ان کا لکشیہ جموں کشمیر سے الگاؤواد اور آتنکواد کا سماپت کرنا ہے اور اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
دوستو آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم راجنیتی چرچا، جسے لے کر ہمارے ساتھی اپستھت تھے قائم رضوی، اور اب پرستت ہے کارکرم ایران بھرمڑ۔
ایران بھرمڑ۔
دوستو کارکرم ایران بھرمڑ کے کرنے کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے۔ ایران کی راجدھانی تہران میں اپنی یاترا کو جاری رکھتے ہوئے ہم ایران کے سب سے اونچے ٹاور اور دنیا کے 6ویں دور سنچار ٹاور میلاد ٹاور پر پہنچے ہیں، تو آج ساتھ مل کر میلاد ٹاور کی سیر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔
دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران کی راجدھانی تہران ایک ایتہاسک اور آرتھک مہانگر ہے۔ تہران میں جہاں ایک اور ایتہاسک عمارتیں، پراچین مکان، پرسدھ سنگرہالے اور پارک اس مہانگر کے پریٹن کیندروں کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور جہاں ہر دن ہزاروں کی سنکھیا میں پریٹک انہیں دیکھنے آتے ہیں، وہیں تہران میں آدھونک اور نئے زمانے کی عمارتوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ انہی آدھونک عمارتوں میں سے ایک برج میلاد یا میلاد ٹاور ہے۔ اس ٹاور کو دیکھنے آنے والوں کی بھاری سنکھیا اور اس کی سب سے اونچی منزل پر جا کر تہران کو دیکھنے کی بات ہی الگ ہے۔ میلاد ٹاور تہران کی پہچان بنتا جا رہا ہے۔ میلاد ٹاور ایران کی راجدھانی تہران کے اتر پشچم میں استھت ایک بہودیشیے دور سنچار ٹاور کا نام ہے۔ 435 میٹر کی اونچائی کے ساتھ یہ ٹاور ایران کا سب سے اونچا ٹاور ہے، جبکہ دنیا کا 19واں سب سے اونچا اوشوسنی ڈھانچہ ہے، اور اونچی درشٹی سے یہ دنیا کا 6ٹھا سب سے اونچا دور سنچار ٹاور ہے۔ بینک، اے ٹی ایم، ریسپشن کھیتر اور ٹاور کے پرشاسنک کھنڈ بھی اس استھان پر استھت ہیں۔ میلاد ٹاور لگ بھگ 75 ہیکٹیئر کے کھیترفل کے ساتھ ایک پہاڑی کے بیچ میں استھت ہے۔ 13,000 میٹر کی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ یہ ٹاور کے شیرش پر سنرچنا کی اپیوکتتا کے معاملے میں دنیا کے سبھی دور سنچار ٹاوروں میں سے پہلا ہے۔
मिलर टावर का उपयोग तेहरान में वायरलेस संचार की सुविधा और विस्तार, रेडियो और टेलीविजन कवरेज में सुधार और विस्तार, डिजिटल टेलीविजन के बुनियादी ढांचे, मौसम विज्ञान, यातायात नियंत्रण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। मिलर टावर के प्रारंभिक अध्ययन से ये पता चलता है कि इस टावर के निर्माण के लिए तेहरान में 21 स्थानों का अध्ययन किया गया था, जिनमें से 4 स्थानों को चुना गया था और अंत में तेहरान के उत्तर पश्चिम में कुवे नस्र गीशा की पहाड़ियों को चुना गया था। मिलर टावर को 2008 में 11 वर्षों के दौरान बनाया और खोला गया था। ये टावर आधुनिक तेहरान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मिलर टावर संरचनात्मक रूप से विभिन्न भागों से बना है, जिसमें टावर की निचली इमारत, मुख्य निकाय और टावर के ऊपर गोलाकार भाग शामिल है। टावर की लॉबी में 6 मंजिल हैं। पहली से तीसरी मंजिल पर अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरा हैं, थिएटर, वाणिज्यिक इकाइयाँ और प्रदर्शनियाँ। लॉबी टावर के लिए आगंतुकों का प्रवेश द्वार है और एक अद्वितीय वास्तुकला है। बैंक, ATM, रिसेप्शन क्षेत्र और टावर के प्रशासनिक खंड भी इस स्थान पर स्थित हैं।
इस टावर की निचली 2 मंजिलों में परिसर के विभिन्न कार्यालय स्थित हैं। टावर के मुख्य भाग में आगंतुकों और सुविधा टीम के उपयोग के लिए उच्च गति वाली लिफ्ट है। मिलाट टावर में कुल 6 लिफ्ट लगाई गई हैं। मिलाट टावर की इमारत सबसे ऊपर वाले भाग में 12 मंजिलें हैं और उसका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग मीटर का है। पहली 2 मंजिलें आग जैसे संभावित खतरों के लिए सुविधाओं और आश्रयों के लिए हैं। तीसरी मंजिल से आगे मिलर टावर के विभिन्न मनोरंजन क्षेत्र, रेस्तरां और संग्रहालय हैं। इस टावर की 8वीं और 9वीं मंजिलें भी हैं, जहां दूर संचार उपकरण स्थित हैं और 11वीं मंजिल पर मिलर टावर सुविधाओं का एक और हिस्सा स्थित है। मिलर टावर संरचना का सबसे ऊंचा हिस्सा 120 मीटर का दूर संचार मस्तूल है, जो स्टील से बना है। ये टावर इस इमारत के आखिरी मंजिल से शुरू होता है और तकनीशियनों की आवाजाही के लिए इसमें 2 लोगों की लिफ्ट लगाई गई है। कुल मिलाकर तेहरान में स्थित मिलर टावर परिसर में विभिन्न मनोरंजन और पर्यटन खंड हैं, जिनमें से कुछ टावर के शीर्ष पर स्थित हैं और दूसरा खंड इसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है।
दोस्तों, मिलर टावर की अपनी यात्रा की शुरुआत हम टावर के ऊपर की इमारत की तीसरी मंजिल से करने जा रहे हैं कि जहां शहर को देखने का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म से तेहरान शहर का अलग अलग दृश्य और खूबसूरत नज़ारा पर्यटकों को देखने को मिलता है और इस प्लेटफॉर्म का क्षेत्रफल करीब 880 वर्ग मीटर है। मिलर टावर की तीसरी मंजिल पर एक और आकर्षण तेहरान नगर पालिका के उपहार और पांडुलिपियों का संग्रहालय है, जो 261 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित कार्यों में हम पुराने भौगोलिक ग्लोब का उल्लेख कर सकते हैं, जो 17वीं से 20वीं शताब्दी ईस्वी के हैं और जिसे जॉर्ज पोम्पीडॉ के विशेष संग्रहालय से खरीदा गया था। ये जानना दिलचस्प है कि इन पुराने भौगोलिक क्षेत्रों में फारस की खाड़ी का नाम आता है। इस परिसर के सिक्का संग्रहालय में जाने के लिए आपको टावर के ऊपर की इमारत की 4थी मंजिल पर जाना होगा। ये संग्रहालय विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों जैसे अखामनीश, अश्कानियान और सासानियान काल के 160 अलग अलग सिक्कों को प्रदर्शित करता है, जिन्हें एक निजी संग्राहक द्वारा संग्रहालय में एकत्र और दान किया गया था। इस संग्रहालय में सिक्कों के अलावा पुरातन अवशेष भी देखे जा सकते हैं।
अब आपको हम ले चलते हैं मिलर टावर के एक दूसरे भाग में। ये भाग मिलर टावर के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। इसकी एक वजह यह है कि इस भाग में जो संग्रहालय है वो विशेष है, ईरान के महान बुद्धिजीवियों और प्रसिद्ध हस्तियों से। ये संग्रहालय 271 मीटर की ऊंचाई पर टावर की ऊपरी इमारत की 5वीं मंजिल पर स्थित है। इस संग्रहालय में मौजूद स्टैचुओं में प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक हस्तियों के साथ साथ महान ईरानी वैज्ञानिकों के भी स्टैचू मौजूद हैं। उनमें प्रोफेसर मजीद समई, پروفیسر حسابی، سیمین دانشور، جلال آل احمد، جہان پہلوان تختی، استاد شہریار اور پرسدھ ایرانی چترکار استاد کمال الملک کے اسٹیچوؤں کا الیکھ کیا جا سکتا ہے۔ ٹاور کے اس حصے میں آنا اور قریب سے دیکھنا بڑا آکرشک اور شاندار ہے۔ وہیں میلاد ٹاور کی چھٹی منزل پر تہران کے سب سے خاص، شاندار اور بہترین ریستورانوں میں سے ایک ہے۔ یہ ریستوراں مہمانوں کو تہران کا 360 ڈگری درشیہ پردان کرتا ہے، جو ہر گھنٹے میں ایک بار ہوتا ہے۔ اس ریستوراں کی دیواروں کو بابک گرمچی کی کلاتمک کرتیوں سے سجایا گیا ہے اور یہ پینٹنگیں شاہنامے کی کہانی کو درشاتی ہیں۔
دوستو، اب بات کرتے ہیں میلاد ٹاور کے سب سے مہتوپورن حصہ، جو زیادہ تر پریٹکوں کو اس ٹاور کے شیرش پر کھینچتا ہے، وہ ہے میلاد ٹاور اوپن ویونگ پلیٹ فارم۔ میلاد ٹاور کا یہ حصہ اوپری عمارت کی 7ویں منزل کے آس پاس 3000 ورگ میٹر کے کھیتر میں 280 میٹر اونچا ہے۔ اس حصے میں شہر کے وبھن حصوں کو دیکھنے کے لیے دوربین لگائی گئی ہیں، جن کا اپیوگ پریٹک شہر کے وبھن حصوں کو دیکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ پریٹکوں کی سرکشا کے لیے کھلے ہوئے پلیٹ فارم کو لوہے کے باڑ سے ڈھک دیا گیا ہے۔ یہ منچ واستو میں اس ٹاور کا سب سے لوکپریہ حصہ ہے۔ یہ وہ ستھان ہے جہاں پریٹک آ کر تہران جیسے بڑے اور خوبصورت شہر کو ٹاور پر لگی دوربین سے دیکھتے ہیں۔ پریٹک کچھ منٹ میں لگ بھگ تہران کے ہر کونے کو ٹاور کی اونچائیوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ وہیں میلاد ٹاور کا ایک اور دلچسپ حصہ میلاد ٹاور کی اسکائی ڈوم ہے، جو عمارت کی آخری منزل یعنی 12ویں منزل پر 302 میٹر کی اونچائی پر استھت ہے۔ یہ گنبد 13 میٹر اونچا ہے اور اس کے پورن شیشے کے ساتھ اس کی وشیش اور سندر واستوکلا دھیان آکرشت کرتی ہے۔ عام جنتا کے لیے میلاد ٹاور کے اس حصے میں جانا سمبھو ہے۔
دوستو، آکاش گنبد کے مدھیہ استمبھ میں پراچین ایران کے پراچین اتہاس سے لے کر اسلامی یوگ تک کے پرتیکاتمک چتر ہیں۔ کلا کا یہ کاریہ پرسدھ کلاکار ڈاکٹر رضا یحییائی کی کرتی ہے اور اس کے ڈیزائن میں جل، وایو، پرتھوی اور اگنی کے 4 تتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آسمان گنبد کے پیٹرن کے ڈیزائن میں شانتی، نیائے، پریم اور سنگھرش جیسی مولیوان نیتک اودھارناؤں کو پریرت کیا گیا ہے۔ میلاد ٹاور کے آکاش گنبد کے بعد ایک دور سنچار ٹاور ہے، جس کے بارے میں ہم نے کاریکرم کی شروعات میں بتایا تھا۔ 120 میٹر اونچا یہ ٹاور مہتوپورن ہے۔ میلاد ٹاور کی اپنی یاترا کے اس حصے میں ہم اس ٹاور کے منورنجن اور کھیل کود پارک میں آئے ہیں۔ جو رومانچ پسند کرتے ہیں اور اونچائیوں سے نہیں ڈرتے، وہ نشچت روپ سے جی میکس پارک کا آنند لیں گے۔ اس پریسر میں بنجی جمپنگ جھولے، آسمان میں اڑنا اور 280 میٹر کی اونچائی پر بنے کانچ کے ڈبے جیسی کئی رومانچک گتیویدھیاں شامل ہیں۔
کئی پارک جی میکس اپکرن آوشک مانگوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی وزن شمتا کے 8 گنا تک کی شمتا رکھتے ہیں۔ اس پریسر کی ڈراونی گتیویدھیوں میں سے ایک 280 میٹر کی اونچائی پر چلنا ہے، جو واستوکتا سے تھوڑا دور لگ سکتا ہے۔ ٹاور کے گنبد کے ایک حصے میں 32 میٹر لمبا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، جہاں روچی رکھنے والے چل سکتے ہیں۔ میلاد ٹاور نے بچوں کے لیے آکرشک حصہ بھی اپلبدھ کرایا ہے۔ کار ریسنگ اینڈ جاب سٹی دنیا میں مہتوپورن نوکریوں کا انوبھو کرنے کے لیے بچوں کے بودھک وکاس کے لیے ایک آکرشک وچار ہے۔ 2 سے 13 ورش کے آیو کے اس حصے میں اپیوکت نوکری کا انوبھو کر سکتے ہیں۔ اس کھنڈ میں اسپتال، ڈاک گھر، سنگیت اکادمی، اسٹور آدی جیسے کئی کاریہستھل ہیں، جو بچوں کے لیے ایک سکھد انوبھو ہے۔ تو دوستو، کارکرم کے انت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میلاد ٹاور کی سیر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے کارکرم تک کے لیے ہمیں انومتی دیجیے۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य के कन्या कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम ईरान में इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद धार्मिक जागरूकता आध्यात्मिकता के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों पिछले कार्यक्रम में हमने उल्लेख किया था कि ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता ने क्षेत्र पर काफ़ी व्यापक प्रभाव डाला है। इस्लामी क्रांति और दुनिया की दूसरी क्रांतियों के बीच मुख्य अंतर धार्मिक अध्यात्म में है। इस्लामी आंदोलनकारी संगठनों पर ईरान की इस्लामी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा है। ईरान की इस्लामी क्रांति की अध्यात्मवादी भव्यता और महिमा के कारण पश्चिम ने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी और शत्रु के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था।
इस्लाम एकमात्र ईश्वरीय धर्म है जो व्यापकता और सार्वभौमिकता का दावा करता है। इसलिए मुसलमानों की धार्मिक पहचान को मिटाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक ये है कि इस्लाम आज की मानव जाति की समस्याओं और जरूरतों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत ने, जिसने धर्म को राजनीति से अलग करने पर जोर दिया, धर्म को सामाजिक जीवन से बाहर कर दिया। साम्यवादी व्यवस्था में धर्म को राष्ट्रों की अफीम कहा जाता था, लेकिन इस्लामिक क्रांति ने धर्म को एक महान और प्रेरक शक्ति के रूप में बदल दिया और धर्म को अफीम बताने वाले कम्युनिस्ट और साम्यवादी नास्तिक विचारधारा की त्रुटि का खुलासा किया। इस्लामिक क्रांति यह साबित करने में सफल रही कि धर्म सभी समाजों की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
इस्लामी क्रांति की सफलता के साथ देश की राजनीतिक स्वतंत्रता बहाल हुई। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने स्वतंत्रता का उल्लेख एक ऐसे कारक के रूप में किया जो एक राष्ट्र के जीवन और इतिहास को महत्व देता है और उसे गौरवान्वित करता है। इस्लामी क्रांति के महान नेता कहते हैं कि हम दूसरों के अधीन रहकर जीवन को महत्व नहीं देते। हमारे लिए जीवन का मूल्य स्वतंत्रता और स्वाधीनता में है। हम उन सभी शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे देश पर आक्रमण करना चाहते हैं। आज ये देश और राष्ट्र की इच्छा है। राष्ट्र अपने दृढ़ विश्वास के साथ औपनिवेशक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए बाध्य है।
ईरान की इस्लामी क्रांति एक आधुनिकतावादी सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने न केवल ईरान में इस्लामी पहचान को पुनर्जीवित किया बल्कि इस्लामी जगत में भी इस्लाम की शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया। इस्लामी क्रांति ने इस्लामी विचारधारा को पुनर्जीवित करके विभिन्न क्षेत्रों में इस्लाम और मुसलमानों की भूमिका पर प्रकाश डाला और पश्चिम की सार्वभौमिक पहचान के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखा है। मध्यकालीन के बाद पश्चिमी संस्कृति साइंस और मजहब के बीच टकराव के मार्ग पर आगे बढ़ी और उसने लोगों में धर्म के प्रति नफरत को बढ़ावा दिया, लेकिन इस्लामिक क्रांति की सफलता के साथ ही धर्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के अनुयायियों में भी अपने धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ी।
स्पेनिश दार्शनिक इस्माइल कैबलिस का कहना है कि धर्म जिंदा हो गया है, चर्चों में नई पहचान पड़ गई है। ये सब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के धार्मिक आंदोलन का असर है। एक मैक्सिकन पादरी का कहना है कि आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आपने ईमान को दुनिया में फिर से जिंदा कर दिया और इससे भी बढ़कर शासन को धर्म से जोड़ दिया। हम ईसाइयों में वो शक्ति नहीं है कि लोगों के दिलों में ईमान को रोशन करें, क्योंकि लोगों को अब हम पर भरोसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामी क्रांति की उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसका इनकार नहीं कर सकता है। ये उपलब्धियां इतनी व्यापक हैं कि एशिया से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैली हुई हैं। दूसरी ओर इस्लामी क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और उसके समीकरणों को भी बदल कर रख दिया।
पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने 1980 के दशक में इस्लामिक क्रांति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, हम यूरोपियों को 1980 के दशक में सोवियत संघ के हथियारों और सैन्य उपकरणों से डर नहीं हैं, क्योंकि अगर पूर्वी ब्लॉक के पास हथियार और खतरनाक उपकरण हैं तो हमारे पास भी आधुनिक और उन्नत हथियार हैं। लेकिन हमें ईरान की इस्लामिक क्रांति और उसकी संस्कृति से डर है। इस्लामिक क्रांति के वैश्विक प्रभाव का मूल कारण इस्लाम की शिक्षाएं हैं। ये क्रांति सिर्फ दुनिया के एक क्षेत्र के लोगों की इच्छा नहीं थी, इसलिए इसे सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इस्लाम की शिक्षाओं को पेश करने के कारण इसने वैश्विक रूप धारण कर लिया। इस्लामिक क्रांति ने राष्ट्रीय सीमाओं को पार किया और उसकी प्रसिद्धि वैश्विक हो गई और उसकी उपलब्धियां पूरी दुनिया में फैल गईं।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति धार्मिक मूल्यों के आधार पर सफल हुई और उसने एक ऐसी दुनिया में की जहां सरकारों के बीच संबंधों का आधार भौतिक लाभ और धर्म से राजनीति को अलग रखना था, नैतिकता और अध्यात्म जैसे गैर भौतिक मूल्यों को दुनिया में नए विमर्श के रूप में पेश किया। अमरीकी राजनेता डैनियल पाइज ने इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा था कि हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि इस्लामी क्रांति से पहले हमने धार्मिक विचारों के लिए कोई रास्ता खुला नहीं रखा था। अपनी धार्मिक प्रकृति के कारण इस्लामी क्रांति की विचारधारा में ईश्वर में आस्था, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के विभिन्न पहलू हैं। ये बिंदु है कि जो सरकारों के संचालन और उनके विदेशी संबंधों को एक नए तरीके से परिभाषित करता है, दुनिया भर में हर वर्ग के लोगों के बीच दिलचस्पी का कारण बना। इस विचारधारा ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पश्चिम के हितों के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दीं और समय के साथ साथ इसकी तीव्रता बढ़ती गई। इस तरह इस्लामी क्रांति की प्राकृतिक विचारधारा और नेतृत्व ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में और विशेष रूप से इस्लामी जगत में इस्लामी आंदोलनों में एक नई रूह फूंक दी।
इस्लामी क्रांति के नेता इमाम खुमैनी का मानना था कि इस्लामी सिद्धांत और नियम किसी समय या किसी स्थान से विशेष नहीं है और ये समस्त इंसानों की जरूरतों का जवाब देने में सक्षम है। उनका कहना था कि इस्लाम के शुरुआती दौर में जो राजनीति थी वो एक वैश्विक राजनीति थी। पैगंबर इस्लाम ने दुनिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया था और उसे इस्लाम की दावत दी थी। उन्होंने दुनिया को इस्लामी राजनीति और इस्लामी शासन की स्थापना का निमंत्रण दिया था। ईश्वर ने कुरान में पैगंबर इस्लाम को संबोधित करते हुए कहा है, हमने तुम्हें दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस आधार पर इमाम खुमैनी का मानना था कि आज दुनिया को मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुद्ध इस्लाम की जरूरत है।
दोस्तों, वीकली मैगजीन ऑब्जर्वर ने इस संदर्भ में लिखा था, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह नबियों का दर्जा रखते हैं जिन्होंने दुनिया को धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करने की दावत दी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने सोवियत संघ के अंतिम शासक गोरबाचोफ को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम के इस वैश्विक दायित्व के तहत पत्र लिखा था। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक पत्र में लिखा था, जनाब गोरबाचोफ, मैं चाहता हूं कि आप इस्लाम के बारे में गंभीर रूप से शोध करें और ये इसलिए नहीं कि इस्लाम और मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि इस्लाम के मूल्य वैश्विक हैं जो सभी राष्ट्रों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। बीबीसी टीवी चैनल ने अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि 1979 में ईरान में जो घटना घटी वो सिर्फ ईरानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि दुनिया के लिए ये एक अहम मोड़ था।
एक प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजशास्त्री एंथनी गिंडेंस लिखते हैं, इस्लामिक क्रांति और 1980 के दशक की शुरुआत में दुनिया की सामान्य प्रक्रिया में एक विपरीत प्रक्रिया हुई और दुनिया ने धार्मिक रंग में रंगना शुरू कर दिया। डेली टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के 10 लोगों में से एक ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसी अखबार के अनुसार शोध से पता चलता है कि युवाओं में इस्लाम के प्रति रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ईरान की इस्लामिक क्रांति ने इस्लाम पर आधारित एक व्यवस्था स्थापित करने और सरकार के गठन में इस्लामी सिद्धांतों को आधार बनाया और दुनिया के सामने एक नया आदर्श पेश किया।
दोस्तों, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और समय हो चुके हैं आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कहना है कि अमेरिका ईरानी राष्ट्र को बहकाने में नाकाम रहा। विदेश मंत्री ने इसराइल को पूरे इलाके के लिए गंभीर खतरा बताया है और इराकी जनता ने एक कार्यक्रम में अमरीकी दूतावास की टीम को बाहर निकाल दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।